समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है अंगदान का महत्व। अंगदान केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि मानवता की सेवा में एक महान कार्य है। इसीलिए अंगदान को महादान भी कहा गया है। अंगदान करने से किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की जान बचाई सकती है, और जो शरीर के किसी भी अंग की खराबी से ग्रसित है, अंगदान के जरिए आप 8 व्यक्तियों के जीवन में नई उम्मीद का सवेरा ला सकते हैं। अंगदान का फैसला अद्भुत होने के साथ ही निस्वार्थ कार्य भी है। ये दूसरों की नई जिंदगी देता है और समाज में दया और मानवता का प्रतीक है। अंगदान की प्रक्रिया और उसके महत्व पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रतिरोपण संगठन यानी नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नोटो के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार, और राष्ट्रीय नेत्र बैंक के प्रभारी अधिकारी तथा भारतीय नेत्र बैंक संघ के महासचिव डॉक्टर राजेश सिन्हा। स्टूडियो में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार।
श्रोताओं, आपके मन में अंगदान और इसी के महत्वपूर्ण भाग नेत्रदान से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। स्टूडियो की फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481-2371-7116 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश ही भेजें और कॉल मत करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले आप लोगों से हम जानना चाहेंगे कि अंगदान के बारे में ये बताइए कि कौन कौन से अंग जीवित रहते दान कर सकते हैं और कौन कौन सी मृत्यु के बाद।
नमस्कार। जो जीवित रहते हुए अंगदान हो सकते हैं उसमें किडनी का दान है। हमारे पास 2 किडनी होती है तो 1 किडनी हम जीवित रहते दान कर सकते हैं
जी।
लिवर भी हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा अंग है जिसका एक हिस्सा हम जीवित रहते दान कर सकते हैं। और वो लिवर में ये है कि लिवर कुछ दिनों बाद वापस ग्रो कर जाता है, वापस उसको बन जाता है, तो लिवर दोबारा आपका पूरा रिकवर हो जाता है जो आपने दान किया है। तो लिवर में हमारा कोई अंग लॉस नहीं होता
जी।
तो लिवर तो यही 2 मुख्य अंग हैं जो कि जीवित रहते हुए दान किए जाते हैं। मृत्यु उपरांत जो दान हो सकते हैं तो उसमें जो अंग हैं 6 तरह के अंग हैं जो कि मृत्यु उपरांत सारे के सारे बहुत ही मतलब जीवनदायी अंग हैं, उनके बिना जीवन संभव नहीं है। तो किडनी और लिवर मृत्यु उपरांत भी दान हो सकते हैं। उसके अलावा हार्ट है जो कि दिल जिसको बोलते हैं हिंदी में, और हमारे लंग्स हैं दोनों फेफड़े, वो 2 फेफड़े होते हैं, 2 किडनी होती हैं, एक लंग एक हार्ट होता है, इंटेस्टाइन और पेनक्रियाज होता है
जी।
तो 6 तरह के अंग हो गए और इसमें से 2 जुड़े हुए हैं। जैसे 2 किडनी है वो अलग अलग मरीजों को लग सकती हैं
जी।
और 2 फेफड़े भी अलग अलग मरीजों को लग सकते हैं। तो टोटल 8 व्यक्तियों का जीवन इससे बचाया जा सकता है। और इसके अलावा मृत्यु उपरांत हम अंगों के अलावा टिश्यूज का भी दान कर सकते हैं, जो कि जिसमें कि कॉर्निया है जो सबसे कॉमन दान किया जाता है, जो आई भी बोलते हैं जिसको कॉमन भाषा में, और स्किन का त्वचा का दान आजकल बहुत जरूरी मतलब बहुत कॉमन हो गया है, और जिससे जो जले हुए व्यक्ति हैं उनका जीवन बचाना संभव हो पा रहा है बहुत ज्यादा जो जले हुए लोग होते हैं, और हड्डियों का दान भी। ये 3 कॉमन दान है। उसके अलावा 70-75 तरह के टिश्यूज हैं जिनको दान किया जा सकता है। तो ये सब एक मृत्यु उपरांत व्यक्ति दान कर सकता है।
और डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से प्रकाश। प्रकाश, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या सवाल है आपका।
नमस्कार मुकेश जी, दोनों विशेषज्ञों को भी मेरा नमस्कार।
जी
नमस्कार। नमस्कार।
सबसे पहले तो सभी देशवासियों को होलिका की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाह रहा हूँ।
जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सवाल पूछिए।
मैं डॉक्टर साहब से दो तीन छोटे छोटे जिज्ञासाएं हैं मेरी। एक तो मैं ये पूछा था कि मैं स्वयं एक दिव्यांग हूँ, ब्लाइंड हूँ। सर अगर कोई दिव्यांग आदमी अंगदान करना चाहता है तो उसकी प्रक्रिया क्या है और कैसे कर सकते, कौन कौन से कर सकते। दूसरा ये पूछा था कि जैसे बताते हैं कि भाई किडनी दान किया जाए तो खून से रिलेटेड हो उसको ही दी जा सकती है, तो क्या दूसरे को कैसे लगाई जा सकती है। और एक ये पूछ रहा था कि मान ले कैसे पता चलेगा कि ये दान किया गया है या फिर इसको कहीं दुरुपयोग नहीं हो जाए, इसके बारे में जानना चाह रहा था।
देखिए जो दान किया जाता है उसके लिए आप एक अपनी एक शपथ ले सकते हैं जिसकी प्रक्रिया बहुत सरल है, जो कि एक वेबसाइट के जरिए आधार नंबर अपना वेरीफाई करके आप उस शपथ को, भारत सरकार की वेबसाइट है noto.abdm.gov.in, इस पर जाकर अपना आधार नंबर डालकर और आप अपना OTP डालकर और वेरीफाई करके फिर फॉर्म खुल जाता है। आप उसको भर के प्रतिज्ञा ले सकते हैं कि मैं मृत्यु उपरांत अंग दान ये करना चाहता हूं। तो वो आपके अंग एक कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए भारत सरकार के संस्थाओं के जरिए वो जरूरतमंद जो वेटिंग लिस्ट में है उन्हीं को दिए जाते हैं। इसमें कोई भी दुरुपयोग की कोई संभावना नहीं है। ये अंग जो है एक वेटिंग लिस्ट के आधार पर दिए जाते हैं, जो मरीज वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम है। तो आप और जो जिंदा व्यक्ति दान देना चाहता है तो उसमें दो तरह से दान होता है। या तो आप अपने नजदीक के रिश्तेदार को दान करते हैं जिसमें आपके परिवार का कोई व्यक्ति अगर बीमार है, जैसे पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वाइफ है, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन या भाई बहन है, तो इनको आप नियर रिलेशन में बोलते हैं। उसके अलावा अगर इसके अलावा किसी को आप दान देना चाहते हैं जिंदा जो ऑर्गेन है, तो उसके लिए एक ऑथराइजेशन कमेटी होती है जो कि इसको अप्रूव करती है, तो उसमें आप दे सकते हैं। अगर उनको आप कोई बीच में लेन देन का मामला नहीं होना चाहिए और आप प्यार मोहब्बत से आप उस वजह से उसको दान देना चाहते हैं, उसकी जान बचाने के लिए दान देना चाहते हैं, तो आप उसमें कोई भी रुकावट नहीं है। कोई मित्र को भी आप ये अंगदान जीवित रहते भी कर सकते हैं। बाकी मृत्यु उपरांत जो अंगदान है वो वेटिंग लिस्ट के हिसाब से एलोकेट किए जाते हैं। वो
बिल्कुल कुल मिला के दान दान है, सौदा नहीं है। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, राम शंकर वाजपेयी हैं जो रायबरेली से जुड़े हैं। राम शंकर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल है आपका?
मैं ये पूछना चाहता था कि जो व्यक्ति अंगदान करने वाले हैं उनको सरकार की तरफ से प्रोत्साहित करके क्या कदम उठाती है, उसकी क्या प्रक्रिया?
इनका सवाल है कि सरकार किस तरह से प्रोत्साहित करती है अंगदान करने वालों को और क्या प्रक्रिया है?
देखिए जो अंगदान के लिए मैंने जैसे बताया कि आप शपथ ले सकते हैं ताकि जब अगर मौका आए तो उस समय आपका अंगदान कराया जा सके। और शपथ लेने का मतलब ये नहीं है कि आपके अंग निकाल लिए ही जाएंगे, उस समय भी आपका जो परिवार है, परिवार के लोग हैं, वो हाँ भरेंगे तो ही आपका अंगदान संभव है। तो परिवार के व्यक्तियों की सहमति फिर भी जरूरी है आपकी शपथ लेने के बाद भी, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए अंगदान की प्रतिज्ञा लेने के वक्त में आप अपने परिवार को भी ये बता दें कि आपने अंगदान की प्रतिज्ञा ली है, तो उतना आप बताने के बाद में। और फिर इसमें ये, क्योंकि ये दान है, इसको हम किसी एक उससे नहीं जोड़ सकते। भारत सरकार की तरफ से फिर भी ये है कि दानी व्यक्ति को एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए व्यवस्था भारत सरकार करती है, जिसमें एक मुक्त राशि उसको परिवार को दी जाती है कि उनका सम्मानजनक अंतिम संस्कार किया जा सके। उसके अलावा एक जो डोनर को हम रेस्पेक्ट देने का एक प्रावधान होता है, एक शॉल, एक सर्टिफिकेट, वो एक दिया जाता है। तो क्योंकि ये दान है, इसको हम किसी भी तरह से अगर उसको किसी इंसेंटिव से ज्यादा जोड़ेंगे तो उसमें दान की जो पवित्रता है उस पे आ जाती है।
बिल्कुल। और हमारे साथ डॉक्टर राजेश भी हैं। राजेश जी आपसे हम जानना चाहेंगे, नेत्रदान कौन कौन व्यक्ति कर सकता है? कोई बीमारी, उम्र या अन्य कारण से ग्रसित व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है? इसके अलावा जो लोग कैटरेक्ट की सर्जरी करवा चुके हैं या जिनके चश्मे का नंबर बहुत ज्यादा है, क्या वो भी नेत्रदान कर सकते हैं?
जी हाँ, नेत्रदान हर व्यक्ति कर सकता है। और नेत्रदान जो है वो मृत्यु के बाद ही होती है
जी।
तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि अपने परिजनों और अपने परिवारजनों की सहमति के साथ ये नेत्रदान किया जा सकता है। किसी की कैटरेक्ट सर्जरी हुई हो या कोई भी और भी सर्जरी हुई हो, वो व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है और उसकी आँखों की का इस्तेमाल किसी अन्य व्यक्ति की रोशनी लाने के लिए, उसकी विजन लाने के लिए किया जा सकता है। तो ये नेत्रदान करने में एक ही इसमें इश्यू आता है कि अगर किसी किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी डिसेमिनेटेड कैंसर के कारण हुई हो, जिसमें कैंसर पूरा फैला हुआ है शरीर में, या फिर सेप्टिसेमिक शॉक के कारण हुई हो, तो उन सब व्यक्तियों से जो नेत्र लिया जाता है उसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए। अदरवाइज जो भी व्यक्ति है वो दान नेत्रदान कर सकता है।
और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेंद्र हिसार से, हरियाणा से हैं। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हमारे विशेषज्ञ से सवाल पूछिए।
डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। आपको
नमस्कार। नमस्कार।
मैं जानना चाहता हूँ, जो अंग दान किसी का लिया हुआ है और वो किसी पेशेंट को लगता है, मरीज को, तो वो कितना सफल रहता है? ये भ्रांति है कि काफी लोग, हमने डर सुना है कि इतना सक्सेसफुल नहीं होता है। और दूसरा ये डॉक्टर साहब से जानना था कि जो सर की केस है, बाल है, वो भी क्या अंगदान में और इसमें आते हैं? वो भी किसी को चाहिए तो वो लग सकता है क्या? नमस्कार।
हाँ, जो सर का जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन की जो आप बात कर रहे हैं, वो अंग दान में नहीं आते। वो तो आमतौर पे आपके अपने ही बाल पीछे से निकाल के उनको प्रत्यारोपित किया जाता है। तो अंग दान में एक व्यक्ति से दूसरे को दिया जाता है। तो अंग जो अंग दान की जो आप बात कर रहे हैं, क्या वो चलता है कि नहीं चलता, ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका 40 साल पहले किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और आज भी वो किडनी चल रही है, और उनके पिताजी ने वो किडनी दी थी और वो पिताजी की मृत्यु हुए 15-20 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी किडनी आज 105 साल की हो गई है और वो किडनी आज भी चल रही है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि 25-25 मृत्यु उपरांत जिन लोगों ने अंगदान किए, उनके जो वो मृत्यु हुए हुए 20-25 साल हो गए और अभी तक वो अंग, जैसे दिल है, फेफड़े हैं, वो चल रहे हैं। तो अंग चलते हैं अगर ढंग से हम उनको, बाद की केयर हम ढंग से करें, जो उसमें डॉक्टर की सलाह बाद में दी जाती है, अगर उनको हम माने, ठीक से करें और अपना जो खान पान है, जो भी एडवाइसेस दी जाती हैं, वो सबको फॉलो करें, तो अंग प्रत्यारोपण एक बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है और ये बहुत लंबे समय तक इससे हम अपने आप को हेल्दी रख पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो डायलिसिस पे था, अब वो बिना डायलिसिस के ही अपना सारा जीवन ठीक से गुजार रहा है, और उस समय दिन हफ्ते में 3-3 बार डायलिसिस के लिए जाता था, पूरा दिन वेस्ट होता है, पूरा परिवार का एक और व्यक्ति साथ में जाता है, तो कमजोरी वगैरह भी बहुत आती है, इन्फेक्शंस का भी चांस रहता है। तो अगर उसका किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है तो उसकी लाइफ की क्वालिटी कितनी इंप्रूव हो जाती है। और ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं कि अंग दान होने के बाद जो कि बड़ी बड़े पहाड़ों पे चढ़ गए, जो बड़े बड़े, अभी मन की बात में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं कि एक महिला जिसको हार्ट का लगा किसी व्यक्ति से, तो दान किया हुआ, और वो बाद में नीलकंठ भी गई और केदारनाथ भी गई और आज गाड़ी चला रही है। तो ऐसा नहीं है, जो ये मन बिना बात की भ्रांति है, ये अंगों का आप जिनको आप जला देंगे या उनको दफना देंगे, अच्छा है कि दान करके जाएं तो किसी के
काम आ जाए। जी बिल्कुल। जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं, उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम अंगदान का महत्व पर चर्चा कर रहे हैं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रतिरोपण संगठन यानी नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नोटो के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान तथा भारतीय नेत्र बैंक के प्रभारी अधिकारी और भारतीय नेत्र बैंक संघ के महासचिव डॉक्टर राजेश सिन्हा। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, अविनाश त्रिपुरा से। अविनाश, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल।
जी नमस्कार।
नमस्कार
जी। तो मेरा सवाल है, आजकल देखिए सोशल मीडिया में कहिए या फिर एक भ्रम फैला हुआ कि आप अगर अंग दान करेंगे तो अगले जन्म में आपको विकलांग विकलांग होके आप पुनर्जन्म होगा, इस प्रकार से भ्रम फैला कर लोगों को अंगदान से विमुख रखा जा रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है?
देखिए ये बिल्कुल भ्रांति है, इस ये फैलाया जाता है और इस तरह का कुछ भी नहीं होता। आप ये देखिए कि आप आत्मा हमारी जाती है परलोक में और अंग तो हम यहाँ पे जला ही देते हैं या उन्हें दफना ही देते हैं, तो अंग तो किसी के साथ में जाती नहीं कि अगले जन्म में वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो अंग तो हम वैसे ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो आप ये समझिए कि आत्मा ही मिलती है, अंग हमारे पेरेंट्स से हमारे को शरीर के रूप में प्राप्त होते हैं, तो वो धरती में ही प्राप्त होते हैं और धरती में ही मिट्टी में मिल जाना होता है। तो ये एक बिल्कुल ही भ्रामक लोगों के मन में ये गलत धारणा है कि आप जो है अंगों को अपने साथ ले जा सकते हैं या उनको अगले जन्म में भी आपको मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होता। अंग जला दिए जाते हैं या दफना दिए जाते हैं, तो क्यों ना उनको हम जिंदा रखें दूसरे कई अन्य व्यक्तियों के शरीर में, और हम हमारी आत्मा तो फिर भी चली गई है लेकिन हमारे अंग तो जीवित रहेंगे हमारे जाने के बाद भी।
और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर से, विजय कुमार। विजय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए। नमस्कार, क्या सवाल है?
नमस्कार जी।
नमस्कार,
और आपको भी होली का शुभकामनाएं। ढेर
आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
हाँ सर जी, मेरा ये सवाल है कि अंग दान देने के लिए कुछ उम्र की कोई अट होती है क्या?
बिल्कुल, बताएं डॉक्टर साहब।
देखिए इसमें अंग दान में कोई उम्र की सीमा नहीं है, और जो जीवित व्यक्ति अंग दान करते हैं जरूर उनमें हम उम्र की सीमा जरूर लगाते हैं कि आमतौर पे 60-65 साल के बाद में कई बार हम लीवर वगैरह का दान नहीं करते, लेकिन किडनी में उसमें फिर भी और ज्यादा उम्र तक भी दान हो सकता है, और मृत्यु उपरांत तो कोई उम्र की सीमा नहीं है। ऐसे ऐसे भी हुए हैं कि 90 साल के व्यक्ति ने भी अंग दान किए हैं। वो डॉक्टर उस समय डिसाइड करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे, अगर आपके अंग स्वस्थ हैं, काम कर रहे हैं और दूसरे को जीवन दे सकते हैं, तो क्यों हम उन्हें दान नहीं होने देंगे? हम तो उनको बिल्कुल दूसरों को लगाएंगे और उनका जीवन बचाएंगे। तो कोई उम्र की सीमा नहीं है, तो इस भ्रांति में मत रहिए कि भाई उम्र की सीमा है तो हम दान नहीं कर सकते।
डॉक्टर राजेश आपसे जानना चाहेंगे कि मृत्यु के कितने देर बाद नेत्रदान की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए, और मृतक के निकट परिजन को कहां पर संपर्क करना होता है, इसके लिए कोई फोन नंबर या वेबसाइट है?
जी हाँ, देखिए मृत्यु के जितनी जल्दी अगर ये प्रक्रिया शुरू की जाए उतना अच्छा है, और मृत्यु के तकरीबन 6 घंटे तक अगर हम कॉर्निया निकाल लेते हैं, कॉर्नियोस्क्लेरल रिम होता है वो, तो उसकी स्थिति बहुत अच्छी होती है। पर ऐसा नहीं है कि 6 घंटे के बाद अगर हम निकालें तो उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ये इस पर भी डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है। अगर सर्दियों के मौसम में हम ज़्यादा लंबे समय तक 17-18 घंटे तक भी रहता है तो अगर मृत्यु के बाद हम कॉर्निया निकाल लेते हैं, गर्मी के दिनों में भी 8-10 घंटे तक बड़े आराम से हम निकाली हुई कॉर्निया को यूज़ कर सकते हैं
जी।
ये इस पर भी डिपेंड करता है कि बॉडी को किस तरह से प्रिजर्व किया गया है, एक तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि ये जो भी प्रक्रिया है इसके लिए हमारा या तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, नोटो ने बहुत ही इसमें आगे काम किया है, पर हमारा राष्ट्रीय आई बैंक जो है, राष्ट्रीय नेशनल आई बैंक जिसे कहते हैं, जो आरपी सेंटर एम्स में है, वहाँ का एक फ़ोन नंबर है, जो वो नंबर हमेशा वहाँ रहता है, मोबाइल नंबर है जिसपे कि वो फ़ोन करें तो कांटेक्ट कर सकते हैं सीधा। वेबसाइट भी है, उस पर भी जा सकते हैं, पर फ़ोन से आज के ज़माने में इंसान के पास फ़ोन हर वक्त होता है, तो बड़े आराम से एक फ़ोन नंबर है जो वो डायल करें और इमीडिएटली टेक्नीशियन जो 24 घंटे बैठा होता है आई बैंक में, वो फ़ोन उठाएगा और जहाँ भी जाना है वहाँ हमारे ड्राइवर्स, गाड़ी वाले सारे तैयार बैठे होते हैं 24 घंटे ड्यूटी पे, ताकि वो जरा भी विलंब ना हो और वो शीघ्रातिशीघ्र वहाँ पे पहुँच जाए।
इसके अलावा एक और चीज जानने चाहेंगे कि आई बैंक की जो टीम, जैसे आपने बताया कि तैयार रहती है और पहुँच जाती है, और एक व्यक्ति जो नेत्रदान करता है वो कितने व्यक्तियों के जीवन में उजाला ला सकता है?
देखिए एक व्यक्ति के पास 2 आंखें हैं, तो एक आंख से हम तीन व्यक्तियों को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं।
बहुत बड़ी बात।
एंटीरियर लेयर एक होता है जैसे आज के डेट में कॉम्पोनेंट कॉर्नियल सर्जरी जिसका नाम है, मतलब कॉर्निया के भी अलग अलग लेयर्स का अलग अलग लोगों में इस्तेमाल हो सकता है। तो एक कॉर्निया से तीन लोगों का भला हो सकता है, रोशनी दी जा सकती है, और एक व्यक्ति से दो कॉर्निया निकलता है। तो आप समझिए कि यदि एक व्यक्ति नेत्रदान करता है तो छह व्यक्तियों जिनकी रोशनी नहीं है उन्हें हम आंखों की रोशनी दे सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि, और ख़ास करके जो नेत्रदान है और जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन है, जो नेत्र प्रत्यारोपण है, वो सबसे सक्सेसफुल प्रत्यारोपण माना जाता है। तो इसलिए नेत्रदान के लिए जैसा कि हर साल हम लोग नेत्रदान पखवाड़ा भी करते हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं इनकरेज करने का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारे में जान सकें कि नेत्रदान करना कितना ज़रूरी है। और जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा कि वो शरीर तो हमें नष्ट ही हम कर देते हैं, तो अगर उसे किसी की रोशनी देने में एक व्यक्ति से छः व्यक्ति को रोशनी दे सकें, इससे बड़ा पुण्य का काम और इससे बड़ा महादान कोई नहीं हो सकता।
और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिमला से राकेश। राकेश जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका।
जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला, और आपको पूरे देश को होली की शुभकामनाएं
आपको।
और मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, जो व्यक्ति अंगदान करना चाहते हैं, अगर वो नशे से जुड़ा हुआ हो तो क्या वो ऐसे व्यक्ति अंगदान कर सकते हैं जो नशे से जुड़े होते हैं?
बताएं डॉक्टर साहब।
आप जो नशे से जुड़े हुए हैं, अगर वो अनफिट होगा, देखिए जीवित रहते तो हम लोग जो नशे से पीड़ित लोग हैं तो जीवित रहते तो हम डिस्करेज करते हैं कि अगर वो जीवित अंगदाता बनना चाहते हैं, मतलब जिंदा रहते ही अंगदान करना चाहते हैं, तो हम नहीं चाहते कि हो सकता है कि वो इसलिए दान कर रहे हों कि उनको एक कोई पैसे का लालच हो और वो उससे नशा अपना जारी रखना चाहते हों। लेकिन मृत्यु उपरांत अंगदान करने में नशे से पीड़ित व्यक्ति में भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती है किसी भी तरह की, जब तक कि अगर उसके बाकी अंग सब स्वस्थ हैं। तो अंगों का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, वो ही एक पैरामीटर है जिसके बेसिस पे उन अंगों का दान कराया जाता है और लोगों को दिया जाता है। जो डॉक्टर साहब ने अभी हमारे आई के बारे में बताया कि टोल फ्री, मैं उसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि हमारा 24 घंटे का एक टोल फ्री हेल्पलाइन है जिसमें कोई चार्ज भी नहीं लगता और 24 घंटे वो चालू रहता है, नोटों की हेल्पलाइन है। वो नंबर सभी नोट कर लें, मैं बता देता हूं
जी,
1800 11 4770, 1800 11 4770। हिंदी में भी रिपीट कर देता हूं, 1800 11 4770। तो ये इस नंबर पे आप कॉल करके 24 घंटे कभी भी अंगदान के बारे में कोई जानकारी ले सकते हैं। किसी का घर में मृत्यु हो गई है, उसका आपको कॉर्निया डोनेशन करवाना है, वो भी आप करवा सकते हैं। फोन करके हमारी टीम कोऑर्डिनेट कर लेगी, आपके घर के पास जो नियरेस्ट आई बैंक होगा उनसे टीम भिजवा दी जाएगी। जो अंगों का दान है वो आमतौर पर ब्रेन स्टेम डेथ की स्थिति में होता है, जब व्यक्ति आईसीयू के अंदर होता है और वो ब्रेन डेड हो जाता है। लेकिन जो टिश्यूज का दान है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, वो जो सामान्य मृत्यु है या जो हार्ट जिसमें रुक जाता है, ब्रेन स्टेम डेथ की सिचुएशन नहीं होती, हार्ट भी रुक जाता, तो ब्रेन स्टेम डेथ में तो अंगों का दान प्लस टिश्यूज का दान दोनों हो सकते हैं। और जब हम हमारा हार्ट रुक जाता है तो उस समय जो है, अगर उस समय तक दान नहीं हो पाया है तो उस समय हम टिश्यूज का दान ही करवा पाते हैं, और घर से भी कॉर्निया और स्किन जैसे टिश्यूज का दान घर से भी हो सकता है।
एक और श्रोता डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहम्मद काजी दिल्ली से। मोहम्मद काजी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका।
जी नमस्कार।
नमस्कार,
मैं मोहम्मद काजी बोल रहा हूँ दिल्ली से।
जी
जी बताइए।
सर मेरा पूछना ये है, जैसे आपने आई डोनेशन के बारे में बात की, अगर किसी व्यक्ति को आई डोनेशन की मदद से आंख लगाई गई हो और वो मर जाए तो क्या वो दोबारा अपनी आई डोनेशन कर सकता है?
देखिए ये तो ऐसा सवाल है जिसका उत्तर देना इस पे डिपेंड करता है कि उसके आंख की स्थिति उस वक्त कैसी थी। जैसे किसी ने अगर नेत्रदान के बाद उसने नेत्र प्रत्यारोपण यानी कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कराया है और उसकी कॉर्निया बिल्कुल हेल्दी है, तो वैसी स्थिति में उसकी कॉर्निया को भी लेके इस्तेमाल किया जा सकता है, पर ये एक ऐसी सिचुएशन है जो बहुत ही रेयर होता है और वो हमें फेस करने को मिलता नहीं है यूजुअली। पर जो आप कह रहे हैं अगर देखा जाए तो टेक्निकली करने को वो भी किया जा सकता है।
डॉक्टर साहब एक चीज़ और जो है कि यहाँ दिल्ली में जैसे महानगर हैं यहाँ पे ये सुविधा है कि तुरंत डोनर जो है वो अपना दान कर सकता है और आई बैंक और इन सब से सहूलियत मिल सकती है, लेकिन छोटे कस्बों और ग्रामीण व्यक्ति को कहाँ पर संपर्क करना होता है और इसकी वेबसाइट या टोल फ्री नंबर जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या सुविधाएं हैं?
देखिए जो मैंने नंबर पहले बताया जो हमारी टोल फ्री हेल्पलाइन है तो उसमें कोई कॉल करने का चार्ज भी नहीं लगता और वो पूरे नेशनल हेल्पलाइन है, पूरे देश से कहीं से भी कोई भी व्यक्ति कॉल करता है तो मैं आपको बताऊं कि पिछले साल लगभग 200 से ज्यादा कॉर्निया डोनेशन हेल्पलाइन के जरिए ही हो पाए
जी।
तो मतलब वो नेशनल हेल्पलाइन के जरिए उसमें क्योंकि हमने सारे आई बैंकों को मैप किया हुआ है तो जब नंबर पे कॉल आती है तो हम उसके नियरेस्ट आई बैंक को सूचित कर देते हैं और वहां से टीम चली जाती है घर पे और तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 24 घंटे व्यक्ति अवेलेबल है और आप वो हमारे ट्रेंड काउंसलर होते हैं जो हर तरह की जानकारी उनको उपलब्ध है और सारे जो फैसिलिटीज है वो सब मैप्ड है तो इसलिए कहीं से भी चाहे ग्रामीण जगह से भी कोई कॉल करना चाहे कर सकता है।
डॉक्टर साहब एक चीज और है कि अंगदान का निर्णय लेने के बाद उस व्यक्ति की जिम्मेदारी क्या होती है, वो परिवार में लोगों की इसकी जानकारी दे सकता है और इसके बाद उसके परिजन की क्या जिम्मेदारी, दोनों की जिम्मेदारियां क्या रहती हैं?
अंगदान के अगर आपने अंगदान के लिए शपथ ली है तो आपका फर्ज है कि आप अपने परिवार को जरूर बताएं क्योंकि अल्टीमेटली जब आपकी मृत्यु होगी तो अंगदान की जो करवा पाएंगे आपके परिवार के लोग ही करवा पाएंगे
जी।
और वो उनका कंसेंट देना, उनका एक तरह से सहमति देना वो बिल्कुल जरूरी है कानूनी रूप से, बिना उनकी सहमति के अंगदान नहीं होगा चाहे आपने शपथ भी ली हुई हो। तो इसलिए परिवार को जरूर बताएं और हम जो ऑनलाइन वेबसाइट से प्लेज कराते हैं उसमें परिवार के दो व्यक्तियों के नंबर भी आपसे भरवाते हैं ताकि उनको तुरंत सूचना चली जाए कि आपने अंगदान कर लिया है। उसके बाद जो परिवार के व्यक्ति हैं उनकी जिम्मेदारी ये है कि भाई आपके इस परिवार के व्यक्ति ने एक इच्छा जाहिर की थी कि मैं मेरे अंगों का दान कर दिया जाए, उन्हें वेस्ट ना जाने दिया जाए, तो हमारा फर्ज होता है कि हम उसके उस इच्छा का पालन करते हुए या उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि मेरे नेत्र दान करवा दिए जाएं
जी।
तो उस इच्छा को पूर्ण करना एक परिवार की एक जिम्मेदारी है और उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो भी संभव है, जो भी जानकारी चाहिए वो हेल्पलाइन से भी ले सकते हैं और अस्पताल के लोगों को भी बता सकते हैं जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया
जी।
तो जो भी दान करना आना चाहते हैं, जो आपके परिवार की इच्छा।
एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, राशिद अहमद खान छतरपुर से। राशिद आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या सवाल है आपका, जल्दी से पूछिए।
नमस्ते सर, सभी देशवासियों को होली की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं, रमजान शरीफ की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं
जी। सवाल पूछिए।
मेरा प्रश्न ये है सर कि क्या रेटिना डोनेट की जाती है या रेटिना कहीं ट्रांसप्लांट होती है सर, प्लीज बताओ।
देखिए रेटिना डोनेट नहीं होती है और ट्रांसप्लांट नहीं होती है और ये जो भी कॉर्नियल जो ट्रांसप्लांटेशन होता है वो कॉर्निया का होता है तो अगर रेटिना में कोई अगर बीमारी है तो उसके लिए अलग इलाज होता है, वो ट्रांसप्लांटेशन से ठीक नहीं होता।
एक और डॉक्टर साहब आपसे जल्दी से सवाल पूछ लेते हैं, सबसे अधिक किन अंगों की मांग रही है और आजकल किडनी और लिवर की बीमारी बहुत होने लगी है तो इसके क्या कारण है?
सबसे ज्यादा जो अंग की मांग है हमारे देश में वो किडनी के ट्रांसप्लांट की है, किडनी लोगों की बहुत फेल हो रही है और इसका मुख्य कारण हमारे यहाँ डायबिटीज का होना, ज्यादा जो शुगर की बीमारी जिसको बोलते हैं आम भाषा में, और ब्लड प्रेशर हाई होना, तो इन दो वजह से हमारे किडनी बहुत फेल हो रहे हैं। तो आपको इन सबको कंट्रोल रखना है और अंग दान के लिए आप सबको प्रेरित करना है ताकि जिनके अंग फेल हो चुके हैं उनको हम जीवन दे सके, उनको हम आगे उनका जीवन बचा सके जो लोग जिन लोगों के अंग फेल हो चुके हैं।
बिल्कुल, और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और साथ ही राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रतिरूपण संगठन यानी नोटो के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान भारतीय नेत्र बैंक के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर राजेश सिन्हा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है nsdairnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। मुकेश कुमार को अनुमति दीजिए। नमस्कार।